लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम में हम इन दिनों लगातार ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबर्स की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से छोटा नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और उससे भी बढ़कर पीड़ितों एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। फादर लेबर्स ने मिशन के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह मिशन किसी मनुष्य की नहीं बल्कि ईश्वर की योजना थी। इस कार्यक्रम में पिछले सप्ताह हमने देखा था कि तोरपा मिशन में किस तरह फादर कजेट बीमार हो गए थे एवं दवाई के अभाव में उनकी मौत हो गई थी। आज हम देखेंगे कि फादर डेस्मिथ सुस्वस्थ होकर फादर लेबर्स को मदद देने पुनः वापस तोरपा लौट गए हैं। हम यह भी देखेंगे कि फादर लेबर्स किस तरह पिता ईश्वर के प्रेम एवं करुणा का साक्ष्य देते हैं तथा लोगों को मिलजुल कर रहना सिखलाते हैं। फादर कजेट के निधन के बाद दार्जिलिंग से अभी अभी रांची लौटे फादर डेस्मिथ तोरपा के लिए रवाना हुए। फादर लेबर्स और फादर डेस्मिथ ने मिशन के कार्य का बंटवारा फिर उसी तरह किया जिस तरह बीमार होने से पहले किया करते थे। फादर डेस्मिथ गांव जाने और पूरा समय गांव में ही बिताने लगे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते थे एवं वहां लोगों को धर्म शिक्षा और बपतिस्मा देते तथा उनके बीच संस्कारों का अनुष्ठान करते थे। गांव में ही खाते और सोते थे जबकि फादर लेबर्स घर में रहकर सुबह से शाम तक लोगों को सुनते थे, उनकी समस्याओं का हल करते थे, नए ख्रिस्तों को भर्ती करते थे, उनकी शिकायतों को सुनते एवं उन्हें सांत्वना देते थे, रिपोर्ट देने आए प्रचारकों एवं स्कूल शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करते थे। अब तोरपा में फिर से लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी और 1887 के अंतिम महीनों में ख्रिस्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अगस्त माह के अंत में जो संख्या 10,000 थी, अक्टूबर में 15,000 हो गई, दिसंबर में 20,000 की संख्या जनवरी 1888 में 25,000 हो गई। फादर लेबर्स यह अच्छी तरह जानते थे कि उनके ख्रिस्तों की एक बड़ी संख्या नाम मात्र और सिर्फ इच्छा के लिए ख्रिस्त थी। ना तो कोई व्यवस्था थी, ना मार्गदर्शन, और कैथलिकों के करीब आधे गांवों का दौरा कभी नहीं हो पाया था। फिर भी वे ख्रिस्त धर्म में प्रवेश पाने के आंदोलन को रोकना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत वे इसे और विस्तृत करना चाहते थे ताकि सभी गांव, सभी दल और सभी लोग इस आंदोलन में सहभागी हो सकें तथा समस्त छोटा नागपुर ख्रिस्त के पास आ सके। विगत 2 सालों तक फादर लेबर्स ने लोगों की स्थिति पर ही गौर किया था और ख्रिस्त धर्म में प्रवेश दिलाने का कार्य उनकी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में मदद करते हुए की थी। उन्हें जमींदारों से न्याय दिलाया था। वे लोगों को अनंत शांति देने आए थे किंतु उन्होंने इस दुनिया में भी लोगों को खुशहाल बनाया था। कुछ समय तक देखने और विचार करने के बाद उन्होंने कार्य शुरू किया था। उनका स्पष्ट उद्देश्य था कि अधिक से अधिक आत्माओं को कार्तिक धर्म में लाना, पूरे छोटा नागपुर का मन परिवर्तन करना। मन परिवर्तन ईश्वर के वरदान, विश्वास के वरदान को स्वीकार करना है जिसको मनुष्यों के द्वारा ही एक दूसरे को बांटा जा सकता है। ईश्वर के वरदान को अधिक स्वीकार्य बनाने या दिखाने कि ईश्वर एक पिता हैं जो अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर प्यार करते हैं। इस बात को उनके ठोस मानवीय परिस्थिति में प्रस्तुत करने के लिए फादर लेबन्स ने लोगों को उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता में उनकी मदद करने का निर्णय लिया। फादर लेबन्स चटनागपुर के लोगों की आवश्यकता के बारे बतलाते हुए लिखते हैं, इस देश के लोगों को न सोना, न चांदी, न दवाई, न चमत्कार, न स्कूल, न ज्ञान, न सीख, न संपत्ति और न ही किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। ये मुंडा, उरांव और खड़िया क्या चाहते हैं? एक भार उनके लिए असहनीय है। उन्हें अपनी जमीन चाहिए जहां वे खेती करते हैं, जिसको उनके परदादों ने साफ किया है। हिंदुओं ने आकर उन्हें लूट लिया है और उन्हें जमींदारों की सेवा में लगा दिया है। उनके सीमित कानून से उनकी मदद करने पर आप उनके मित्र बन जाते हैं और वे सच्चे दिल से ख्रिस्ते बनते हैं। जब तक कोई एहसान नहीं मिलता, एक मुंडा ख्रिस्ते नहीं बन सकता, और यदि वह एक बार ख्रिस्ते बन जाता है तो वह अपने विश्वास को कभी नहीं खोता। फादर लेबन्स द्वारा लोगों को मदद करने हेतु कोर्ट केस में पहले जीत ने लोगों को आकर्षित किया। उनका नाम, उनकी सेवा और उनकी सफलता की चर्चा बहुत तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा क्षेत्र ख्रिस्ते बन गया। फादर लेबन्स लोगों की इस एकता और बल को बनाए रखना चाहते थे। लोग इससे विस्मित नहीं थे जब फादर लेबन्स उन्हें मदद देने के लिए शर्त रखते थे कि पूरा गांव या समुदाय एक साथ आए। गांव के बुजुर्ग एवं मुखिया तथा समुदाय के प्रसिद्ध लोगों से प्रचारकों द्वारा संपर्क किया जाता था। ख्रिस्तीय धर्म में प्रवेश की क्रिया मिशनरी या एक व्यक्ति के बीच नहीं रह गई थी, बल्कि फादर एवं समस्त गांव समुदाय के बीच की क्रिया थी। कभी कभी लिखित सहमति भी बनती थी कि यदि कोई व्यक्ति पहले की स्थिति में अथवा प्रोटेस्टेंट समुदाय में लौट जाएगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तोरपा में रहते हुए एक सप्ताह भर के अंदर फादर सीस्ट ने इसका उदाहरण पाया। जब लुथेरनों के एक प्रसिद्ध गांव बुज्जू से उनके पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, यह कहते हुए कि गांव उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जिसमें कहा गया है कि सभी कैथोलिक बनना चाहते हैं और यदि उनमें से एक भी अगर प्रोटेस्टेंट समुदाय में लौटेगा तो वह 25 रुपया भरेगा। फादर लेबन्स लोगों के बीच रहते थे और वे उनके दुखों एवं इच्छाओं से अच्छी तरह परिचित थे। वे गांव के लोगों को अपने पास बुलाते थे और बतलाते थे कि वे उनकी अनंत खुशी के लिए यहां आए हैं और साथ ही उनके शारीरिक कल्याण के लिए भी। वे उनसे कहा करते थे कि वे उनकी मदद उतना ही कर सकते हैं जितना कानून अनुमति देता है। वे अपने गांव जाएं और लोगों को एक साथ ख्रिस्ते बनने के लिए प्रेरित करें एवं मिलकर उनसे अपनी सहायता की मांग करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी एवं मिशन पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक लालच बुरी बलाए। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, मानव जीवन में कामनाओं लालसाओं का एक अटूट सिलसिला चलता ही रहता है। सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद कुछ और भी प्राप्त करने के इस माया जाल से मनुष्य मृत्यु पर्यंत मुक्त नहीं हो पाता। अधिकांश को धन की लालसा होती है और यह लालसा भी कि वह जीवन को सुख पूर्वक भोगे, लेकिन सुख का निवास मन है और मन से ही व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। संतोषी व्यक्ति क्योंकि मन से संतुष्ट रहता है वह सदा सुखी होता है। एक गरीब जो कुछ उसे थोड़ा बहुत प्राप्त होता है उसी को ईश्वर का प्रसाद समझकर संतुष्ट और सुखी होता है, किंतु वह धनवान जिसे संतोष धन प्राप्त नहीं है अपना सारा जीवन धन लिप्सा में गुजार देता है। लालच ऐसी बुरी चीज है जिसके फेर में पड़कर मानवता तक को ताक पर रख देता है। सत्ता लिप्सा, धन लोलुपता, पद लोलुपता के चलते व्यक्ति किसी भी सीमा तक गिर सकता है। ऐसे ही कामनाएं करते धरते उनका जीवन बीत जाता है, लेकिन वह कभी भी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाता। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में लालच की भावना नहीं लानी चाहिए। लालच की बुरी बला तब समझ में आती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं भवानी कौल का लिखा नाटक लालच बुरी बलाए।
अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो भाई, दे दो भाई,
दे दो माई। भगवान के नाम पर हम पर रहम करो, ईश्वर आपको और देगा।
भाई साहब एक रुपया दे दीजिए, एक आपका एक रुपया हमारी भूख मिटा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको सलामत रखे।
ईश्वर आपको खूब दे, आपकी झोली भर दे।
अरे देखो आंचल, जल्दी से ड्रेस देखो और फाइनल करो, हमें देर हो रही है।
ओ राहुल, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना।
देखो ऐसे कुछ भी नहीं ले सकती ना। अरे ड्रेस खरीदना कोई आसान थोड़ी है, पहन कर देखना पड़ता है, फिर उन्हें निकालना पड़ता है। अरे टाइम तो लगता है और फिर इतने सारे कपड़ों में से चूज करना है। अरे अपनी पसंद मिलनी भी तो चाहिए ना। सुनो राहुल, देखो ना ये कैसा लग रहा है, ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन, सुंदर है ना, पहन कर देखूं क्या।
अरे सुनो, मुझे जल्दी जाना है आंचल, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, समझती क्यों नहीं।
ओहो बस एक मिनट में चेंज करके आई डार्लिंग, प्लीज वन मिनट।
ये भगवान ने इन महिलाओं को बनाया ही क्यों, सजना संवरना पूरा टाइम वेस्टिंग, उफ इसके चक्कर में तो।
राहुल मैं इस इवनिंग गाउन में कैसे लग रही हूँ बताओ ना डार्लिंग प्लीज। स्मार्ट है ना, अच्छा है ना, एकदम फिटिंग का है, ले लूँ क्या।
हाँ हाँ अरे ले लो भाई, जल्दी करो। मोटी भैंस कहीं की कितनी देर लग रही है, मीटिंग में भी देर हो रही है और ये
डार्लिंग। एक और देख लूं क्या, सेल चल रहा है ना, प्लीज 50% ऑफ, एक ले लूं क्या।
क्या तुम्हारे 50 के चक्कर में मेरा 100 चला जाएगा, अरे जल्दी करो भाई।
भगवान के नाम पे कुछ दे दो भाई साहब, भाई साहब एक रुपया दे दीजिए।
माई दे दो ना, एक रुपया दे दो। हे माई,
अरे सुनो सुनो।
हाँ क्या हुआ।
ये देखो ना, ये नीचे देखो,
क्या
किसी भले मानुष ने अपना बैग छोड़ दिया है।
छोड़ नहीं दिया, भूल गया होगा।
हाँ वही वही वही, बैग एक मिनट, बैग देखता हूँ।
अरे पता नहीं किसका है, मत
देखो तो अंदर कुछ नहीं, पता एड्रेस कुछ होगा, पहुँचा देंगे किसी को।
अरे देखो हम गरीब लोग हैं,
देख ही तो रहा हूँ,
कोई हम पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ ना छोड़ दो इसे।
नहीं नहीं नहीं, देखो इसके अंदर देखते हैं
क्या।
अरे ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के हैं।
हाय राम,
अरे बाप रे, इसे कोई कैसे भूल सकता है।
क्या सोने के सिक्के, हे भगवान किसका होगा।
तेरो तेरो गिनने दो, गिनने दो।
कितने भी, अरे तो
100 है, 100, 10-10 की डेरी लगा के देखा मैंने।
हम तो पुलिस के हवाले कर देंगे।
हाँ
है ना,
हाँ पुलिस के हवाले कर देते हैं, चलो पुलिस को दे देंगे।
चलो चलो,
मेरा बैग, ये तो मेरा बैग है।
अब भाई साहब ये आपका बैग है ना। हाँ आ जाइए, हमने कब कहा कि हमारा है, ये आप ही का बैग होगा।
भाई साहब यहाँ पड़ा मिला था हमें, सो हमने संभाल कर रख लिया, वरना कोई दूसरा उठा ले जाता तो शायद आपको मिल भी नहीं पाता।
ये बैग तो खुला हुआ है, किसने खोला इसको?
ये हमने खोला है, इसमें इसमें सोने के 100 सिक्के हैं, पर हमने एक को भी हाथ नहीं लगाया, सब सब वैसा का वैसा ही है।
क्या मतलब?
हाँ भाई साहब, पूरे के पूरे 100 सिक्के, वो भी सोने के, इसमें हैं। गिन लीजिए, गिनिए।
नहीं नहीं, इसमें 100 नहीं 200 सोने के सिक्के थे।
अरे जी नहीं साहब, इसमें केवल 100 सिक्के ही थे। और देखिए, हम लालची नहीं है, हम भीख जरूर मांगते हैं, लेकिन हम बहुत ईमानदार हैं साहब।
हाँ साहब, हम भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर लेते हैं, और हम इसी में खुश हैं क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस बस हमें और कुछ नहीं चाहिए साहब।
हाँ।
हमारी नियत पर शक मत करिए।
नहीं नहीं, हम हाँ। हम ईमानदार लोग हैं।
ठीक है, इसके लिए तुम्हें कोर्ट चलना पड़ेगा, वहीं अपनी ईमानदारी पेश करना होगा।
कोर्ट?
हाँ कोर्ट।
ठीक है साहब, हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, भीख जरूर मांगते हैं, पर हम भगवान से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं।
साहब हम जाएंगे, हम डरते नहीं, हमने कोई गलत नहीं काम किया। हाँ
हाँ भाई रामू, फाइल दिखाओ। बताओ राहुल जी।
सर मैं जल्दबाजी में अपना बैग मॉल के बाहर रखे बेंच पे भूल गया था, जिसमें सोने के 200 सिक्के रखे हुए थे, और ये बैग इन्हें मिला सर।
जी सरकार, ये बैग हमें मिला था, पर ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब, इस बैग में सोने के 100 ही सिक्के थे।
जी सरकार, हमारी ईमानदारी पर संदेह मत कीजिए, यदि ऐसा होता तो उसमें से कुछ सिक्के चुरा लिए होते, या फिर बैग ही कहीं छुपा देते हम तो। हाँ।
लेकिन हमने तो बाकायदा लौटाया है हुजूर।
हाँ सरकार, हमने पूरा बैग लौटा दिया।
ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर। तो ये बात है, देखिए बात ये है कि
जज साहब, इस महिला से पूछ लीजिए, इन्होंने उसे सिक्के गिनते हुए देखा था।
ये सच है सर कि मैंने इन्हें सिक्के गिनते हुए देखा है, पर मैं मॉल गई थी और मॉल से बाहर निकलकर मैंने देखा ये दोनों कुछ सोने के सिक्के गिन रहे हैं।
आपको पता है ये सिक्के कितने थे?
नहीं सर, मैंने तो बस गिनते हुए देखा, कितने थे ये मुझे नहीं मालूम।
ठीक है, आप जा सकती हैं। तो राहुल जी, आपका कहना है कि इस बैग में सोने के 200 सिक्के थे, पर इन लोगों को इसमें केवल सोने के 100 सिक्के मिले। चश्मदीद गवाह भी नहीं है कि जिससे पता चल सके।
जी सर, इसमें 200 सिक्के थे, ये बिल्कुल सच है सर।
मिस्टर राहुल, आप सच कह रहे हैं कि इसमें 200 सिक्के थे, तो फिर ये बैग आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इस बैग में केवल 100 सोने के सिक्के हैं।
जी?
यानी आपने झूठ बोला। मिस्टर राहुल, आप जा सकते हैं।
आंचल, देखा तुम्हारे गाउन के चक्कर में मेरे सोने के 100 सिक्के चले गए।
राहुल, झूठ क्यों बोला? शायद सच बोलते तो इन सिक्कों को नहीं खोते। इसी को कहते हैं लालच बुरी बलाए।
लालच बुरी बलाए। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे समता बोरेकर, दुर्गेश नंदिनी, संतोष जोशी, सुधीर तेलंग और भवानी कौल। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।